own son. And then, अठारह जनवरी 2000 की अगस्त वाणी हेड इंडिया है ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का वायुमंडल फैलाओ किसके समान फैलाओ एक ही कह देते ब्रह्मा समान या बाप समान चलता दोनों शब्द जोड़ने की क्या जरूरत है इसका मतलब हुआ कि जिसके समान त्याग तपस्या और सेवा का वायुमंडल फैलाने की बात कही गई है वो एक है या दो पर्सनालिटी है दो पर्सनालिटी है कैसे इस आधार को बताया पर्सनालिटी जानते हो पर्सनालिटी माना व्यक्तित्व तो। जो इन आंखों से व्यक्त दिखाई पड़ता हो सामने दिखाई पड़ता हो उसे कहते हैं व्यक्ति व्यक्तित्व तो ब्रह्मा वर्तमान की समय की बात है पास्ट की और फ्यूचर की बात नहीं है ब्रह्मा और बाप ये दो शब्द हैं और दोनों को मिला के यहाँ एक साथ रख दिया गया है ब्रह्मा बाप समान तो एक पर्सनालिटी के समान या दो पर्सनालिटी के समान कोई एक कहता है कोई दो पर्सनालिटी कहता है
एक के समान
है
माता पिता
दोनों हाँ सोलंकी भाई बताएंगे सोलंकी भाई खड़े होकर बताइए हाँ
एक दोनों व्यक्ति एक ही किस्म है रामकृष्ण की आत्माओं के साथ पर
अच्छा ब्रह्मा और बाप शब्द जो है वो ब्रह्मा शब्द की सोच के लिए
जो
दादा लेखराज ब्रह्मा की सोच के लिए आया है और बाप शब्द राम बाप के लिए आया है अच्छा तो इनमें आगे पीछे शब्द क्यों हो गया
आगे ब्रह्मा बाबा ने
ब्रह्मा को आगे रखा और बाप को पीछे रखा क्यों
तो माँ का पाठ पहले बजाया
हाँ ब्रह्मा की सोच इस समय कौन सा पाठ बजा रही है माँ का पाठ पहले भी बजाया और अभी भी जो भी माँ का पाठ बजाना है या बजना है उसका विशेष कार्य क्या बताया ब्रह्मा का ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग के गेट खोलने का कार्य तो तन तो निमित्त कोई बनता है क्योंकि ब्रह्मा और दादा लेखराज उस कृष्ण की सोल का तन तो अभी नहीं है लेकिन ब्रह्मा कोई न कोई तन में प्रवेश करके कार्य कर रहा है अब जिसके समान त्याग तपस्या और सेवा का वायुमंडल फैलाने की बात कही गई है वो पर्सनालिटी एक है माना कंबाइन के रूप है अव्यक्त वाणी में इसका दूसरा नाम क्या दिया है
बाप दादा
बाप दादा और उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है, पाप दादा है कंबाइंड, क्या कंबाइंड है माने सोल तो दो है, आत्माएं तो दो है, लेकिन उनके स्वभाव संस्कार और वाचा में संकल्पों में कृति में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्या दोनों आत्माएं इकट्ठा होकर के कार्य कर रही है इस समय वर्तमान समय? तो बोला ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का वायुमंडल फैला हो, तो जिसके समान कार्य करना है वो व्यक्तित्व दृष्टि पर मौजूद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं तो समान बनने के लिए पुरुषार्थ कैसे करेंगे? सामने कोई होता है टेम्पल तो फॉलो करना सहज हो जाता है, और सामने नहीं होता है तो फॉलो करना कठिन हो जाता है, क्योंकि बुद्धि से खींचना पड़ता है। तो पहले शब्द रखा ब्रह्मा, क्या उसमें पहले पाप को नहीं रखा, इसको रखा फॉलो करने के अर्थ में, मां को आगे रखा, क्यों क्यों आगे रखा माताओं को, या माता को आगे ब्रह्मा को क्यों आगे रखा? अच्छा पहचानते तो पहले है, लेकिन वर्षा तो बाप से मिलेगा, करण करावन हार ब्रह्मा का पार्ट है, हाँ शिव सुप्रीम सोल जो हीरो हीरोइन का पार्ट अदा करने वाली रामकृष्ण की सोल है, ब्रह्मा और बाप प्रजापिता की सोल है, उनके द्वारा करण हार का भी पार्ट बजाने वाली सोल है सुप्रीम सोल, और करावन हार का पार्ट बजाने वाली सोल है सुप्रीम सोल। करण हार का पार्ट किसके द्वारा बजाती है? ब्रह्मा द्वारा। तो बजा रही है या बजा चुकी है या बजाएगी? है बजा चुकी है और अभी भी त्याग तपस्या और सेवा का वायुमंडल फैलाए रही है, संकल्पों की सेवा कर रही है। कौन सी सोल? ब्रह्मा की सोल। तो उसको फॉलो करने की बात पहले बताई, किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को, लेकिन साथ साथ शब्द बाप भी लगाई दिए, कोई मुगासी में ना पड़ जाए क्या कि ब्रह्मा बोला है तो जरूर मां का रूप ही होगा, इसलिए माँ के वर्तमान स्वरूप को कोई फॉलो करने लग पड़े, ऐसे क्लियर कर दिया। ब्रह्मा बाप समान, बाप सबसे पीछे लगा हुआ है, पीछे किस लिए कर दिया गया कि करणहार का पार्ट पहले चलता है, करके दिखाता है दादा लेखराज ब्रह्मा के थ्रू कृष्ण की सोल के द्वारा जो पार्ट चल चुका 59 तक, वो पार्ट करणहार का पार्ट चला, उन्होंने कर्म करके दिखाए, कराने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया, कोई श्रेष्ठ कर्म करे या न करे, लेकिन बाबा ब्रह्मा का उसूल क्या था कि मुझे श्रेष्ठ कर्म करना ही है, दूसरों को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, स्वयं करके दिखाया, तो वो हुआ करणहार का पार्ट। वो तो अपना शरीर छोड़ चुकी, अपना शरीर तो छोड़ चुकी, लेकिन शरीर छोड़ने के बावजूद भी उस सोल को कोई शरीर मिला है या नहीं मिला है? सच कौन सा शरीर मिला है? प्रजापिता का तन मिला है, 100% सरेंडर्ड तन मिला है या कुछ परसेंटेज बाकी है? 100% सरेंडर्ड तन मिला है तो तन किसका हुआ? ब्रह्मा का हुआ या प्रजापिता का हुआ? प्रजापिता का हुआ, अगर सरेंडर कर दिया सरेंडर करने वाले ने, पहले किसका हुआ? नाम क्या बोलो? प्रजापिता
ब्रह्मा,
प्रजापिता ब्रह्मा का हुआ। तन तो ब्रह्मा का हुआ ना, क्योंकि सरेंडर कर दिया ना, कब सरेंडर किया था? पुरस्कार महाकल्याण, जो आत्मा जिस समय ज्ञान में चलती है, अपने को आत्मा समझती है, आत्मा समझने के साथ साथ परमात्मा बाप को पहचानती है, उसी क्षण तुरंत फैसला करके जो अपने जीवन को, तन को, मन को, धन को, समय संपर्क और संबंधों को ईश्वरीय सेवा में लगाती है, तो उसका फल बहुत जास्ती बनता है। क्यों? क्योंकि ये नियम बना हुआ है, जो जितना जल्दी ईश्वरीय सेवा में सरेंडर होता है वो उतना ही पावरफुल सोल बनता है। क्या? त्याग और तपस्या के आधार पर भाग्य बनता है। तो राम वाली सोच तो सारी दुनिया का बीज है, तो जो बीज है वो पहले वर्क करेगा, काम करेगा, या जड़ पहले काम करेगी, तना पहले काम करेगा, या टहनियां और पत्ते का पहले काम करेगी? पहले तो बीज को व्यक्त में सारा कार्य शुरू करना पड़ेगा। तो त्याग तपस्या और सेवा की जो बात यहाँ कही गई है वो पहले पहले लागू तो होती है किसके ऊपर? प्रजापिता के ऊपर। लेकिन ब्रह्मा को आगे क्यों बढ़ाया गया? ब्रह्मा को आगे क्यों रखा गया? हाँ, क्योंकि माताओं में कन्याओं में पेड़ की पावर जास्ती होती है, पुरुषों में उतनी प्योरिटी की पावर नहीं होती। पुरुषों को सबको क्या बोल दिया? पुरुष सब है दुर्योधन दुशासन, सबको ले लिया या किसी को छोड़ दिया? प्रजापिता को छोड़ दिया। अच्छा, दादा लेकर आज ब्रह्मा को छोड़ दिया? उनको भी नहीं छोड़ा। अगर उनको छोड़ दिया होता तो उनकी मूर्ति की पूजा होनी चाहिए पुरुष तन की, लेकिन पुरुष तन की पूजा नहीं होती। उस आत्मा की भी पूजा तब होती है ब्रह्मा बड़ी माँ के रूप में जब वो उसकी जोड़ा धारण करती है। इसलिए ब्रह्मा की सोल को आगे रखा और बाप को पीछे किया। तो ब्रह्मा बाप समान बाप दादा, ये बाप दादा और ब्रह्मा बाप एक तरह से इसकी व्याख्या है, दो प्रकार से भी व्याख्या है। बाप दादा तो इस पर सभ्य सवाणी में बोला है, कंबाइंड है, लेकिन ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बाप अलग अलग व्यक्तित्व है, कमाइंड है। बाप दादा में बाप पहले और दादा बाद में, और कंबाइंड है। बाप को पहले रख दिया, क्यों रख दिया? इसलिए रख दिया कि बाप दादा जब कहा जाता है तो बाप ने दो बाप समाएंगे, कौन कौन? साकार और निराकार, मनुष्य शक्ति का पिता साकार प्रजापिता और आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु। तो बाप दादा एक पर्सनालिटी है, इसलिए शिव को तो आगे रखना ही पड़े। जैसे शिव शंकर उस हिसाब से, और यहाँ तो बोला ब्रह्मा बाप, क्या बोला? ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का वायुमंडल रह रहा हो। तो यहाँ वो एक ही पर्सनालिटी की बात है या दूसरे की भी है?
ये ब्रह्मा ही जगदम्बा ये बोला,
ब्रह्मा ही जगदम्बा है। कौन सा ब्रह्मा?
उस वाली थोड़ी माँ जगदम्बा पूरे से जगदम्बा पाट जाती।
हाँ, तो ब्रह्मा ही जगदम्बा है तो जगदम्बा दूसरी पर्सनालिटी कहेंगे या एक ही पर्सनालिटी कहेंगे? पर्सनालिटी तो दूसरी हो गई। ब्रह्मा जो है वो जगदम्बा के रूप में जब कही जाएगी तो पर्सनालिटी दूसरी हो गई, क्योंकि वो तो महालक्ष्मी का पार्ट है। क्या? महालक्ष्मी का पार्ट है, जिसे भारतीय परंपरा में राजाई में कहा जाता है राजमाता। क्या? एक होती है राजमाता और दूसरी होती है राज लक्ष्मी। तो यहाँ बोला ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का वायुमंडल फैला हुआ। तो जिसका समानता यहाँ दी गई है सैंपल के रूप में, वो यहाँ व्यक्तित्व एक बताया गया है या दो व्यक्तित्व बताई गई है? हाँ, क्योंकि एक है जिसको फॉलो करना है, जो सैंपल के रूप में रखा जाता है वो पहले पहले होना चाहिए। पहले पहले कब से? आज से ही और अंत तक भी, मध्य में भी होना चाहिए। तो बोला आज समर्थ बाप दादा, क्या था? समर्थ बाप दादा। अब यहाँ बाप शब्द तो पहले कर दिया, समर्थ शब्द लगाया तो क्या कह दिया? बाप पहले कर दिया, ब्रह्मा को पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि ओ, 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 एक बार हार्ड फेल हुआ ना, तो हार्ड फेल होता है तो असमर्थता आ गई, यह समर्थ ही कहे ना। कोई तो कोई बात में ब्रह्मा को बाप का सहयोग न होने की वजह से या प्रैक्टिकल पार्ट न होने की वजह से, जैसे लौकिक परिवार में बाप चला जाता है तो माँ अपने को असमर्थ समझती है, क्योंकि बच्चे अगर सहयोग नहीं देते हैं तो माँ को असहाय महसूस होता है। तो इसलिए बाप शब्द के साथ समर्थ शब्द लगाया, और पीछे से वो समर्थी भी तब उत्पन्न होती है जब दादा, दादा माना जो बाप का पहला पहला बच्चा है, सब बच्चों में बड़ा बच्चा है, सब भाइयों में बड़ा भाई कौन? अरे दादा माना बड़ा भाई, तो किस सोच के लिए इंट्रोड्यूस हुआ? सत्य की सोच के लिए। तो आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। क्या कहा? असमर्थ हेल्पलेस हो जाने वाले, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने वाले बच्चों को नहीं देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? समर्थ बच्चों को, जो समय का इंतजार करके बैठ जाए, जो होगा तो देखा जाएगा। अब हमारे बस की बात नहीं, जब होगा तब देखेंगे। तो समर्थी कहेंगे समर्थी कहेंगे असमर्थी की बात हो गई। तो आज समस्त बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समर्थ बच्चे कौन से हैं? ये तो दुनिया में मुख्य मुख्य रूप से तो 9-10 धर्म दिखाए गए हैं चार के चित्र के अंदर। वैसे भी दशावतार प्रसिद्ध है भारतवर्ष में भगवान के रूप में जो समर्थी दिखाई जाती है नंबर वार वो कितने अवतार दिखाए? 10 अवतार दिखाए हैं। 10 अवतारों में एक लास्ट है और एक स्वस्थ भी है। लास्ट वाला किस रूप में समर्थ दिखाया है? हाँ जी विनाशकारी कल्पांतकारी और भक्त। भक्त कौन सा है? तो ये भक्त और जो लाख है जब अंग बनाई जाती है तो क्या होता है? भक्त भी होता है कुंडास्त भी होता है और बाकी बीच में नंबर वार होते हैं। तो समर्थ तो नंबर वार ही होंगे सब एक जैसे होंगे नंबर वार होंगे। तो नास्तिक धर्म जो है वो डिस्ट्रक्शन के हिसाब से समर्थ है लेकिन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से समर्थ ही नहीं है। और जब तक अपनी आत्मा का ही कल्याण नहीं कर सका कोई तो अपन नंबर में कैसे आएगा? पहले तो अपना कल्याण फिर विश्व का कल्याण। तो उस आधार पर समर्थ बच्चों की बात कर रहे हैं। माना जो अव्वल नंबर का ग्रुप है उस ग्रुप का नाम क्या होता है आध्यात्म भाषा में? अरे कौन सा धर्म? आज सनातन देवी देवता धर्म। अरे देवी धर्म या देवता धर्म है? देवता देवी ब्राह्मण धर्म ब्राह्मणी नहीं ब्राह्मणी धर्म नहीं है परिष्ठा का कोई धर्म होता है क्या? धर्म माना धारणा और धारणाएं जो होती है वो नंबर वार अच्छी अथवा बुरी वो तो मानवीय शक्ति पर होती है ना। वरिष्ठों की कोई धर्म नहीं कहेंगे वो तो देह और देह के धर्मों से परे हैं। तो समर्थी नंबर वार है 10 धर्म है उनमें जो पहला है सूर्यवंश वो है सबसे समर्थ धर्म। क्या कहते हैं एक संप्रदाय भी चला है भक्ति मार्ग में समर्थ गुरु रामदास। तो अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं माने कौन से वंश के बच्चे हैं? सूर्यवंशी बच्चों को देख रहे हैं। अरे आज खास ये समर्थ बच्चों को देखने की ललक क्यों आ गई है? और सब ग्रुप के बच्चों को देखते देखते थक गए क्या है? और ग्रुप से काम नहीं चला क्या है? नहीं चलेगा ना, क्योंकि जो पहला शिष्य होता है पहला बच्चा होता है वो लंबे समय की प्रेरणी का परिणाम होता है। उसमें पावर जाती होती है। दुनिया का हर कार्य जो है वो प्योरिटी के आधार पर चलता है। तो ज्ञान सूर्य पहले सुप्रीम सोल बाप से ज्ञान का बीज धारण करता है इसलिए पावरफुल है। शिव गॉड फादर सुप्रीम सोल 5000 वर्ष तक परम धाम घर में बैठ करके लंबे समय तक की जो प्योरिटी की पावर है वो लेकर के आता है। और पहले पहले कौन सा बच्चा पैदा होता है? गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। वो ज्ञान का प्रकाश पहले पहले सूर्य में आकर प्रवेश कराता है। तो ज्ञान का प्रकाश से जिसने प्रवेश कराया पहले पहले वो सूर्य कहा जाता है। और सूर्य से जो बच्चे पैदा होते हैं वो कौन से वंश के हुए? सूर्यवंशी बच्चे। तो ऐसे सूर्यवंशी समस्त बच्चों को देख रहे हैं क्या? वैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं जो समर्थी है उसमें सबसे पहले सूर्य का नाम आता है। रवि पावक जल सम की नाई क्या? रवि पावक माना आदमी, जल माना ज्ञान, जल समर्थ को नहीं दोष गुसाई क्या? जो समर्थ होता है उसको को कोई दोष नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी समर्थी से सब प्रकार के दोषों को, सब प्रकार के कलंकों को नष्ट कर सकता है, धो सकता है, भस्म कर सकता है। इसलिए तीन का मिसाल आता है। नंबर वन, तीन शक्तियां हैं। रवि सबसे पहली शक्ति। रवि क्या करता है? कितना भी दुनिया का कचरा हो उसको भस्म करने की शक्ति करता है। कितनी भी बदबू हो सारी बदबू को सोख सकता है। तो सूर्य में बहुत शक्ति है। लैसर किरणें कहां से कनेक्टेड है? सूर्य से कनेक्टेड है। दूसरा नंबर आता है अग्नि का। अग्नि भी जला देती है कचरे को, भस्म कर देती है, लेकिन सूर्य के मुकाबले इतनी तीखी नहीं है। और तीसरा नंबर आता है जल का, पानी। ये तो तत्व है दोनों, जड़ तो है, लेकिन सूर्य, सूर्य जो ऊपर सूर्य दिखाई पड़ता है वो तो जड़ है, लेकिन उसकी मानव देवी में जो चैतन्य आत्मा है वो भी जड़त्वमयी है। दूसरी आत्माओं के मुकाबले जड़त्वमयी नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव है उसके मुकाबले उसमें जड़त्व ज्यादा है। सुप्रीम सोल चैतन्यता के आधार पर उसको कलर करके रहता है। किसको? प्रजापिता या सूर्य को। और सूर्य सारे संसार की सब मनुष्य आत्माओं को कलर करके रहता है। तो सूर्य में जो जड़त्व है, भले चैतन्य सूर्य हो, वो जड़त्व पहले नंबर का है या दूसरे तीसरे नंबर का है? पहले नंबर का जड़त्व है। कोई ना कोई जरूर ऐसी बात होती है जिसके आधार पर वो आत्मा को सदा शिव नहीं कहा जा सकता। क्या सदा शिव किसे कहा जाए? वो चाहे परमधाम में पहुंच जाए, चाहे इस सृष्टि पर रहे, चाहे इस सृष्टि में रहकर के पाक बजाए, वो सदा शिव ही शिव है। तो वो शिव सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आता है और मनुष्य शक्ति के बाप प्रजापिता में एडम में आदम में प्रवेश करके पाइट बजाता है, तब पाइट के आधार पर उसका नाम पड़ता है सदाशिव। कि ऊपर रहने के आधार पर नाम पड़ता है? पाइट के आधार पर नाम पड़ता है सदाशिव। तो साज आज की बात बताई, कहां की बात बताई? सूक्ष्म बतन की बात बताई। आज सूक्ष्म वतन में जहाँ संरक्षित आत्माएं सूक्ष्म स्टेज में रहती है कौन सा वायुमंडल है? मधुमन का वायुमंडल होगा ना, तब बच्चों की बुद्धि कहाँ रखती रहती है? मधुमन में। तो वो मधुमन कैसा वतन हुआ? वो भी तो वतन हुआ ना बाप का। तो आज समस्त बाप दादा अपने समस्त बच्चों को देख रहे हैं। समस्त बच्चे कौन से हुए? जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं या इस्लाम धर्म का फाउंडेशन लगाने वाले हैं, उन बच्चों को नहीं। जो चंद्रवंश का फाउंडेशन लगाने वाले हैं, उन बच्चों का नहीं, क्योंकि चंद्रमा तो फिर भी सूर्य से रोशनी लेता है। या क्रिश्चियन वंशी, या बौद्धी वंशी, अथवा मुस्लिम वंशी, ये कोई भी उतने समर्थ नहीं है जितना जितना सूर्य समर्थ है। तो ज्ञान सूर्य बच्चों को, समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। क्यों? 2000 में उनको देखने की क्या खास बात हो गई? जब जब स्मृति वर्ष आता तो कोई न कोई खास बच्चों को पहली लाइन में देखा है, लेकिन आज क्या बताया? आज स्पेशल समस्त बच्चों को देख रहे हो और अपने बाकी सब क्या हो गए? बाकी सब कुछ न कुछ पराए हो गए। आज का दिन स्मृति दिवस, सो समर्थ दिवस, क्या आज का दिन स्मृति दिवस? किसकी स्मृति? जो स्मृति दिवस है सो समर्थी दिवस है। कैसे? 18 जनवरी को तो दरी छूट गया, हाथ फेल हो गया, तो समर्थी दिवस कहें या स्मृति दिवस कहें या दोनों कहें? स्मृति दिवस। किस बात की स्मृति? किसने सही छोड़ा? ब्रह्मा बाबा ने हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ दिया। ये स्मृति अच्छी बात है? निगेटिव है या पॉजिटिव है? ये स्मृति दिवस इस बात की यादगार है, जो काम बाप नहीं कर सकता है वो काम कभी कभी बच्चा कर सकता है। सुप्रीम सोल बाप शिव और दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल माँ के रूप में जिस तन में प्रवेश किया उसने पार्ट बजाया, भले कार्यवाह को पार्ट बजाया, लेकिन पार्ट तो बजाया ना। तो सुप्रीम सोल हुआ बाप और ब्रह्मा हुई माँ, तो माँ तो सेकेंडरी हो गई। वर्षा देने वाला कौन? बाप। तो सुप्रीम सोल बाप जो ज्ञान देने वाला है वो किसको ज्ञान देता है? उस ज्ञान को संपूर्ण धारण कौन करता है? शास्त्रों में तो दिखाया हुआ है कि ज्ञान गंगा आई तो कहां समा गई? जटाओं में, सर में समा गई। अब सर में कोई गंगा समाती है क्या? ये तो ज्ञान की बात है। जो भी ज्ञान आया परम धाम से, सुप्रीम सोल आया और उसने जो भी ज्ञान सुनाया वो सारा का सारा किसने हप कर लिया? औरों ने उसको पता नहीं पाया, समझ नहीं पाया। पचाने की तो बात दूर, तो बुद्धि में समाने की भी बात दूर हो जाती है। तो शंकर के लिए गायन है अपनी गोद तो नशा करो। तो ये चित्र दिखाया जाता है उसमें ये नशा दिखाया जाता है। कौन सा? मन चिंतन मंथन का वो नशा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जैसे और नरक पिताएं हैं, मन चिंतनशील स्टेज उनकी दिखाई पड़ती है, वो निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है मन चिंतन की। इंतहा मन चिंतन करके किसी निर्णय पर पहुंच चुके, तो ऐसी निर्णय आत्मक अंतिम स्टेज को प्राप्त करने वाली जो सर्वोपरि धर्म पिता की सोल है वो शंकर के रूप में दिखाई हुई है। वो शंकर के रूप में दिखाई जाने वाली सोल ब्रह्मा से जन्म लेती है। ज्ञान कहां से लेती है? ब्रह्मा, ब्रह्मा से ज्ञान लेती है। ब्रह्मा उस समय मौजूद था, उस समय ज्ञान लिया क्या? उस समय फल नहीं लिया, लेकिन जो भी ज्ञान निकला वो ज्ञान निकलने के समय जो समझाने वाली विचार सरणी है वो कोई व्यक्ति की है या मुरली है? व्यक्ति की। कोई व्यक्ति उसे कन्विंस कर सकता है? कोई व्यक्ति कन्विंस नहीं कर सकता। जो मुरली है वही मुरली ही उसको कन्विंस कर सकती है। उसमें पावर कौन थी? 18 जनवरी स्मृति दिवस के दिन ही अव्यक्तवाणी में बताया है कि ब्रह्मा ने अपनी सारी पावर, परमात्मा शिव ने अपनी सारी पावर कोई बच्चों को ट्रांसफर कर दी नंबरवार को शासन पर। किस दिन? 18 जनवरी। तो नंबरवार को शासन साल की लिस्ट में कोई तो बच्चे होंगे, ज्ञान में आने वाले भी हो सकते हैं या ज्ञान में ना आने वाला भी हो सकता है। ज्ञान में आने वाले ही हो सकते हैं। बाप, बाप दादा बच्चों को इमर्ज करके बोलते हैं। तो 18 जनवरी 68 से पहले भी इमर्ज करके बोलते थे या उसके बाद ही बोलते हैं? पहले भी इमर्ज करके बोलते थे ना। तो वो ज्ञान में आए हुए होने चाहिए, ये ज्ञान में ना आए हुए भी उनकी उनको उनकी भी लिस्ट हो सकती है, उनकी हो सकती है ना। इसका मतलब हुआ कि 18 जनवरी का जो दिन है उस दिन से ही वो आत्मा अपने अंदर कोई विशेष शक्ति का अनुभव करने लगती है। जो सबसे कमजोर आत्मा हो जाती है शक्ति रूपी रंगमंच पर अंतिम जन्म में, वो अपने अंदर शक्ति का अनुभव करती है कि कोई बड़ी से बड़ी हस्ती से भी टकराए सकती है। तो इस तरह की इविडेंस देखने पड़े। वो जीवन चरित्र देखना पड़े, उसकी रिसर्च करनी पड़े, किसकी? उस व्यक्तित्व की जो भले ज्ञान में नहीं आया लेकिन ज्ञान में ना आने के बावजूद भी उसमें वो त्याग, वो तपस्या की शक्ति देखने में आती है। क्यों? क्योंकि जीवन को आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाने की प्रेरणा, अध्यात्म माना आदि माना अंदर, आत्मा माना आत्मा, आत्मा के अंदर की रिसर्च में लगाना ये सबका कार्य नहीं है। ये सबको ये प्रेरणा नहीं मिलती। सब सामान्य पुरुष मनुष्य जो होते हैं वो देह के चिंतन में, देह के पोषण में ही अपना टाइम देते हैं, तन मन धन अर्पण करते हैं। आध्यात्म के मनन चिंतन मंथन में जो सशक्त आत्माएं होती हैं वही कूदती और अपना सर्वस्व निछावर करती है।
तो ये हिस्ट्री देखनी पड़े
कि कौन ऐसी आत्मा उस समय थी, तब 18 जनवरी तब 69 उसी वर्ष उस आत्मा को ज्ञान में भी आना है। क्योंकि मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, मातेश्वरी मम्मा ओमरा दे, तो उसी वर्ष उसकी जो शक्ति है उसकी पूर्ति लेने वाली वो ज्ञान में आ जानी चाहिए। तो वो भी ज्ञान में आ जाती है। इसलिए शास्त्रों ने राधा को बड़ा दिखाया है और कृष्ण को छोटा दिखाया है। तो जैसे राधा की सोल या राधा का पार्ट बजाने वाली सोल तथा उनका ब्रह्मा का शरीर को जन्म ओम राधे का शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में आ जाती है एक साल के अंदर 56 में। अब थोड़ा सा शरीर
65
को शरीर छोड़ा था 24 जून को और एक वर्ष के अंदर उसकी कुर्सी को लेने वाली सोल जो कार्य को संपन्न करने वाली सोल है धारणा मूर्त है वो स्टेज पर आ जाती है। ऐसे ही ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद एक साल के अंदर ही ब्रह्मा की सीट को लेने वाली सोल कोई वारसदार सीट पर आ जाता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि जब ज्ञान में आता है तभी से उसको पावर मिलना शुरू होती है। वो तो ठीक है ज्ञान की पावर तो तभी मिलेगी लेकिन अंदरों में जो आत्म पावर है वो तो सुप्रीम सोल प्रवेश कर सकता है ना। वो तो जानता है किसको अपने रुद्रमाला के हर मांगे को जानता है। भले कोई रुद्रमाला का मणका ज्ञान में ना आया हो तो भी वो जानता है कि नहीं जानता है जानता है। तो उसमें जब चाहे तब प्रवेश करके उस आत्मा को शक्ति विशेष दे सकता है। दृष्टि की भी पावर देता है और वाचा की भी पावर देता है मुकाबला करने की शक्ति भी देता है। क्योंकि और जितने धर्म पिताएं आए उन्होंने समाज का मुकाबला तो किया लेकिन सर्वसमर्थ के रूप में नहीं किया। सुप्रीम सोल जिस किसी व्यक्तित्व के द्वारा कार्य करता है वो सर्वसमर्थ के रूप में भी मुकाबला करने की ताकत रखता है। तो सर्वसमर्थ जो जिसको कहें सर्वशक्तिमान ये सर्वशक्तिमान टाइटल किसका है शिव बाप का है और शक्तिमान टाइटल किसका है प्रजापिता का। लेकिन बाबा ने एक शब्द और जोड़ दिया शक्तिमान से पहले क्या शब्द जोड़ा है तुम बच्चे हो मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम सोल कुछ करता नहीं है न अच्छा करता है न बुरा करता है। अच्छा करे तो उसको पुण्य लगे और बुरा करे तो उसको पाप लगे न तो उसको पुण्य लगता है न उसको पाप लगता है इसलिए उसको शरीर भी नहीं मिलता नहीं होता। तो जिसको पाप और पुण्य लगता है वो ही मास्टर कहा जा सकता है। मास्टर सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान का मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकल में वो आत्मा कार्य करने के भी निमित्त बनती है। शिव सुप्रीम सोल करता नहीं कहा जाता वो करता है या अकर्ता है वो अकर्ता है वो भोगता है या अभोगता है वो अभोगता है और भोगता कौन है जिसमें प्रवेश करे वो भोगता है। इसलिए मास्टर का टाइटल जो है नंबर वन हम बच्चों का है जो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली है मनुष्य आत्मा उन बच्चों का टाइटल है। तो बोला आज का दिन स्मृति दिवस सोल समर्थि दिवस है। इस बात की स्मृति कि आज स्पेशल 18 जनवरी के दिन बाप ने अपनी सारी पावर जो पहले ब्रह्मा के तन में कार्य कर रहा था वो किसी को अर्पण कर दी। आज का दिन बच्चों को सर्वशक्तियां देने का दिवस है।
अरे ब्रह्मा बाप ने कितना बजे सुरक्षा का
रात के 8 बजे आज का दिन माना 18 जनवरी का दिन बच्चों को सर्वशक्तियां विल में देने का दिवस है। ऐसे नहीं 18 जनवरी 69 को ही वो शक्तियां दी जाती है बाद में नहीं दी जाती बाद में भी दी जा सकती है या नहीं बाद में भी दी जितनी भी 18 जनवरी मनाई गई उन 18 जितनी जितनी 18 जनवरी की संख्या बढ़ती जाती है वो भी बढ़ती जाती है। इसलिए बोला पहले भी कई भी और भी जो आकाशवाणियां हैं उनमें भी इस तरह बोला है। आज का दिन स्मृति दिवस है, समर्थ दिवस है, आज का दिन बच्चों को सर्वशक्तियां बिल में देने का दिवस है। सर्वशक्तियां दुनिया में अनेक प्रकार की बिल होती है, बिल करते हैं ना कोर्ट में जाकर। दुनिया में अनेक प्रकार की बिल होती है, कोई मकान बिल करता है, कोई दुकान बिल करता है, कोई खेत बिल करता है, कोई बैंक की संपत्ति बिल करता है। वो तो दुनिया भी बिल की बात हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्वशक्तियों को बच्चों को बिल कर दिया। कब? हाँ, किसने बिल कर दिया? ब्रह्मा बाप ने। यहाँ कौन सा बाप है? हाँ, शिव बाप ने। क्योंकि 18 जनवरी से पहले तो जो सत्ता में कार्य करने वाली सोच थी वो कौन कौन थी? ब्रह्मा थी और सुप्रीम सोच शिव थी, लेकिन प्रजापिता भी थी। प्रैक्टिकल कार्य विभाग में प्रजापिता थी नहीं थी, लेकिन उसके बाद बोला ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्वशक्तियों की बिल बच्चों को की, ऐसी अलौकिक बिल और कोई भी कर नहीं सकते। कोई लौकिक दुनिया की बिल की बात नहीं है, ये शक्तियों की बिल करने की बात है, दिव्य गुणों को बिल करने की बात है, सब प्रकार की शक्तियों को बिल करने की बात है, ज्ञान को भंडार उसे बिल करने की बात है। ऐसी अलौकिक बिल और कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया। नहीं, बाप ने ब्रह्मा बाप को इधर किसको? ब्रह्मा ने ब्रह्मा प्लस बाप दो शक्तियों को, दो आत्माओं को साकार में निमित्त बनाया। कि निराकार आकार में निमित्त बनाया। हम सत्तर की अग्रवाणी में बोला ये साकार सहारा सारे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत श्रेष्ठ सहारा है। इसका मतलब साकार सहारे का इशारा पहले ही दे दिया था ना। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया उसके बाद कोई साकार सहारा प्रैक्टिकल जीवन में साकार श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार के अंदर नहीं रहा था। पहचानने की बात है। तो बोला बाप ने, कौन से बाप ने? हाँ, सुप्रीम सोल बाप शिव ने, गॉड फादर ने ब्रह्मा बाप को, कौन कौन सी आत्माओं को? ब्रह्मा बाप को, ब्रह्मा माना दादा लेखराज की सोल और प्रजापिता की सोल को साकार में निमित्त बनाया। सुप्रीम सोल साकार में निमित्त बनता है, है? निमित्त माना साकार, प्रैक्टिकल कार्य करने वाला, ऐसे मास्टर का टाइटल दिया जाता है। इसने किसको निमित्त बनाया? शिव ज्योतिबिंदु बाप को, जो आत्माओं का बाप है, उसने किसको निमित्त बनाया? ब्रह्मा बाप की सोल को, माना कृष्ण और राम की सोल को साकार में निमित्त बनाया। क्यों? तो साकार में तो उनका शरीर छूट गया, तो निमित्त कहां से बनेंगे? हाँ, जरूर है, कृष्ण की सोल शरीर छोड़ने के बाद, जैसे बाबा बताते हैं, कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो तुरंत जाकर के कोई शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो भले ब्रह्मा को भी उस समय अपना शरीर नहीं था, अपना चोला नहीं लेना, तो चोला था ही नहीं उनका। उन्होंने जो अपने पाप कर्म है वो साकार शरीर से भस्म कर लिए, साकार तन से उनको कर्मातीत स्टेज का लकवा मिल गया, साकार तन उनको अब नहीं मिल सकता। लेकिन साकार तन में प्रवेश करे बगैर कोई आत्मा कार्य कर नहीं सकती, इसलिए ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है और सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव भी प्रवेश करता है। तो बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया, निमित्त बनाया माने प्रैक्टिकल में कोई व्यक्तित्व है 18 जनवरी को ही जिसको निमित्त बनाई दिया। इसका अर्थ तथाकथित ब्राह्मण क्या लेंगे, किसको निमित्त बनाया, प्रकाश मणि दादी को, मनमोहनी दादी को निमित्त बनाया। लेकिन पहली जो 21 जनवरी को वाणी चली है 59 में, उस वाणी में ये क्लियर कर दिया है कि मनमोहनी दीदी डेंटल्स की देखभाल जैसे पहले करती थी वैसे करेंगी। और हेड ऑफिस में जो लिखा पढ़ी का कार्य चलता था वैसे ही इंश्योरेंस जो चलाती थी चलता रहेगा और प्रकाश मणि जो है उसकी सहयोगी रहेगी हेड ऑफिस का कार्य देखने में। तो इंश्योरेंस हेड क्लर्क के रूप में हुई और प्रकाश मणि दादी असिस्टेंट क्लर्क के रूप में हुई। लेकिन कलयुग के अंत में जो राजकाज चलता है किसी भी देश में खास करके भारत देश में उसकी स्थिति क्या हो जाती है, उल्टा हो जाता है। जो अधिकारी है वो अधिकारियों के हाथ में कोई सत्ता नहीं रहती, उन्हें कुछ पता नहीं है कि ऑफिस के अंदर क्या का क्या क्या माजरा हो रहा है। जो हेड क्लर्क होता है उसके हाथ में सारी सत्ता आ जाती है, उसका नाम दिया जाता है लाल सीता शाही। क्या लाल सीता में बनी 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 हुई जो खास खास फाइलें हैं उन फाइलों को वो हेड क्लर्क अपने कब्जे में विशेष रूप दे सकता है। इसे साबित हुआ कि जिनको नौकर बन के रहना चाहिए वो क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, और जो मालिक होने चाहिए वो सिर्फ स्टाम्प रबर स्टाम्प बन जाते हैं। सारे राज्य की यही कलयुग के अंत में रावण राज्य में यही हालत होती है। राष्ट्रपति कहने के लिए सर्वोपरि माना जाता है और प्रधानमंत्री उसका नौकर के रूप में है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है, राष्ट्रपति सिर्फ होता है रबर स्टाम्प। सारी सत्ता किसके हाथ में होती है, मंत्री राजा के हाथ में सत्ता नहीं होती है, राष्ट्र का जो पति है उसके हाथ में सत्ता नहीं होती है, किसके हाथ में होती है, मंत्रणा देने वाले के हाथ में, जिसे पहले महाआमात्य कहा जाता था राजाई काल में, उसके हाथ में सत्ता चली जाती है। तो महाआमात्य हो या प्रधानमंत्री हो वो भी राजा का नौकर होता है या राजा का भी महाराजा होता है, होना चाहिए ये नौकर। तो वही हालत हमारे ब्राह्मण परिवार में हो जाती है। लेकिन बाबा तो क्लियर कर रहे हैं कोई समझे या न समझे, अब इस परंपरा को समझ करके परिवर्तन में लाने वाले कोई तो समझ सकते होंगे कि नहीं होंगे, जरूर होंगे। तो जो समझ करके उसको परिवर्तन में लाने वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं उनसे आज बात कर रहे हैं, सभी बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों को देख रहे हैं। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया, किसको निमित्त बनाया, ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया। यहाँ एक बात और साबित होती है, यहाँ ब्रह्मा बाप शब्द जो है ब्रह्मा प्लस बाप के लिए नहीं आया, प्लस बाप माना माँ का पार्ट अलग हो साकार रूप में और बाप का पार्ट साकार रूप में अलग हो, उनके लिए नहीं आया। किसके लिए आया? एक ही शरीर में दोनों व्यक्तित्व के लिए आया। क्यों? क्या प्रूफ यहाँ मिलता है? यहाँ कौन सा प्रूफ मिलता है इस बात का? बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया। साकार में निमित्त बनाया माना ब्रह्मा की सोलरी कोई तन में है और बाप की सोल राम बाप की सोल भी कोई तन में है। एक ही व्यक्ति के अंदर दो सोल हैं जिनको सुप्रीम सोल बाप ने निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भाव का वरदान दिया, निमित्त भाव का वरदान देकर भिन्न कर दिया। क्या कहा? सुप्रीम सोल ने रामकृष्ण वाली सोल का जो कंबाइंड पार्ट है जिसे भारतीय परंपरा में आर्धनारीश्वर का रूप दिया जाता है उसको निमित्त बनाया और उस आर्धनारीश्वर रूप बाप दादा का हो ब्रह्मा बाप का हो उसने किसको निमित्त बनाया? नंबर वन बच्चों को निमित्त बनाया, निमित्त भव का वरदान दे करके विल कर दिया। क्या? किसको विल कर दिया? कब विल कर दिया? 18 जनवरी को, पहली 18 जनवरी को विल कर दिया या बाद में भी विल करते रहे? हाँ तो बोला विल किया। ये कब बोला? 18 जनवरी 2000 को बोला, विल किया मना कर चुके हैं। किसको विल कर चुके हैं? ब्रह्मा बाप भी बच्चों को नंबर वार विल कर चुके। कब से विल कर चुके? ब्रह्मा बाप ने कब से विल किया और सुप्रीम सोल ने कब विल किया? कोई हिसाब होगा ना? हिसाब नहीं होगा? होगा। तो सुप्रीम सोल बाप ने विल किया वो तो 18 जनवरी फर्स्ट हो गई, 18 जनवरी 69। और ब्रह्मा बाप ने जो स्मृति दिवस को विल किया वो कौन सा वर्ष है? सेवेंटी सिक्स में क्या खास बात है? वो तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है, माँ की तो उसमें बात है नहीं, ब्रह्मा की बात नहीं है। क्या बात है? वो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है तो बाप प्रत्यक्ष हुआ होगा। 88 नहीं, क्यों? सही सही बताओ, सोच के बताओ। दोबारा बताएं, क्लियर करें। देखो शिव बाप ने तो विल किया ब्रह्मा बाप को, कब किया? पहली जो 18 जनवरी है 18 जनवरी 69 को विल किया। लेकिन ब्रह्मा बाप ने फिर नंबर वार बच्चों को विल करना शुरू किया वो कब किया? 18 जनवरी 70 को ब्रह्मा बाप दोनों को विल किया, दोनों सोल को। क्योंकि पीछे क्लैरिफिकेशन में ब्रह्मा प्लस बाप इस तरह भी बताया गया है, ब्रह्मा प्लस बाप माना ब्रह्मा का प्रैक्टिकल पार्ट भी है अलग से जगदम्बा के थ्रू और बाप का पार्ट भी है।
किसने बोला? खड़े होके बताओ।
माता हॉस्पिटल से
है। खड़े हो जाओ।
आप कहाँ गए? अरे कहाँ गया ये?
माता ने दिया बोल रही है।
खड़े हो।
इसने पहले दिया संतरासी की आवाज इधर से पहले आई या इधर से आई है माता उधर से पहले आई है भाई इस समय जो बाप है ना वो हमजिंस की तरफ ज्यादा ध्यान देता है ये तो बात ठीक नहीं आपकी तो हाँ खड़े हो तो ये वैष्णवी दक्षिण आंध्र प्रदेश से इसने बताया और सेकेंडरी किसने बताया बाणावस का रविंद्र भाई रविंद्र भाई ने हाँ रविंद्र भाई ने सेकेंडरी बताया और वैष्णवी दो ने जवाब एक्टिवेट किया क्या जवाब दिया कभी कभी एग्जाम दिया जाता है कोई प्लस में दिया जाता है जैसे नारायण का पास था तो सतयुग में नारायण बनने वाली आत्मा सतयुग की सोल प्रत्यक्ष हुई लेकिन फिर प्लस में कौन आ गया प्लस में राम वाली सोल आ गई तो ऐसे होता है थोड़ा सा अंतर होता है स्ट्राइक तो ये प्रश्न तो बहुत जबरदस्त था किसने जवाब नहीं दिया लंबे समय तक पूछने के बावजूद भी कि शिव बाप ने बिल किया 18 जनवरी 1 को माना 18 जनवरी 69 को और जिनको बिल किया ब्रह्मा बाप को उन्होंने बिल कब किया
ब्रह्मा बाप कंबाइंड एक व्यक्तित्व ने कब बिल किया है क्योंकि उस समय तक बोलते रहे हैं
कोशिश फिक्स हुई है क्या दो चीज फिक्स हुई है तीसरी चीज नहीं बोली बाद में बोलना शुरू किया दो तीन चीज फिक्स हुई है पक्का नहीं बोला दो तीन चीज फिक्स हुई है पक्का नहीं बोला दो भी और तीन भी और अभी एक दो वर्ष पहले अगले समय में बोला तीन चीज फिक्स हो गई है इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी सीट भी पहले से ही नंबर उसका लग चुका था बाबा की नजर में वो आ चुकी थी तो कब से आई वो बताइए तो 83 जो है किस आधार पर बताया 83 में 13 होना चाहिए ना
तो कोई प्रैक्टिकल तो होना चाहिए कि ऐसे ही सवाल ये पैदा होता है कि संतरासी तक 13 सब कुछ 13 कुछ नहीं मेरा वो सब कुछ 13 अभी तक इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी सरेंडर हुए संतरासी तक जो 13 की नहीं बने
सब कुछ 13 करने वाला कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बना क्या नहीं बना होगा तभी तो बोला 83 में 13 होना चाहिए ना तो 83 में 13 कौन हुआ 13 माना साकार का या बिंदु का बिंदु का 13 इसका तो कोई मतलब ही नहीं जरूर कोई साकार में पाठधारी होना चाहिए वो बाप दादा ही है तो बाप दादा का जो कंबाइंड पार्ट है उसका माना 13 बनने वाली जो शक्ति हुई वो ही जगदम्बा है वो जगत पिता की वो जगदम्बा प्रैक्टिकल जीवन में अपने को अर्पण करके बन जाती है इसलिए बोला राशि में 13 होना चाहिए ना तो 13 होना चाहिए जब से कोई अंदर से निश्चय करता है ज्ञान में आने के बाद क्या निश्चय करता है सब कुछ 13 अपने को अर्पण करती है कोई आत्मा उसी समय से बाप उसको अपना सब कुछ मिल कर देते बाप देरी नहीं लगाता बच्चा बना और जिस दिन बच्चे ने जन्म लिया उसी दिन बाप उसको सब कुछ मिल कर देते तो बोला ये मिल ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान देकर के मिल किया कि आप सूर्य निमित्त बन जाओ इस बात के निमित्त ये ज्ञान यज्ञ है ना, ज्ञान यज्ञ का परिवार है। यज्ञ परिवार में जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं वो ब्राह्मण बच्चों की नजरों के सामने बाप तो है, लेकिन बाप के साथ साथ माता के रूप में पायत बजाने वाली भी कोई होनी चाहिए, जिसको देख करके बच्चे समर्पित जीवन व्यतीत करें कि माँ है नहीं और बच्चे पहले पैदा हो जाएंगे। हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो एडवांस पार्टी में एडवांस में अपने को विल करने वो जो बाप ने विल किया, जिन बच्चों को विल किया उसमें अपने को सारे ब्राह्मण परिवार के सामने अपने को अर्पण करने वाले जो बच्चे मैदान में आए, क्योंकि अर्पण करना भी दो प्रकार से बताया है, एक है गुप्त और एक है प्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष अर्पण करने वाले होते हैं उनके अंदर ये एक विशेष बात कि बुद्धि से अर्पण किसने किया और देखने के लिए तन मन धन अर्पण किसने किया। महत्व तो दोनों का है। बुद्धि का अर्पण करना बहुत ऊंची बात है, तन से अर्पण होना, धन से अर्पण होना, समय और संपर्क और संबंधियों से अर्पण होना, ये भी बहुत ऊंची बात है, क्योंकि नियम है जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। मन बुद्धि भी तन और धन के आधार पर जाकर के चिपकती अटैचमेंट पैदा होता है। तो कोई अगर कमजोर आत्मा है तो कमजोर आत्मा भी अपना जो कुछ भी चटपुलिया तन अथवा धन है संपर्कियों और संबंधियों की शक्ति है, थोड़ी भी है, अगर वो अपना सब अर्पण कर दे तो उसमें पावर नहीं आएगी क्या? आएगी ना, और वो पावर इतनी भी आएगी एक टाइम पर कि वो अपनी बुद्धि से भी समर्पित हो सकती है, बुद्धि भी अर्पण कर देगी। तो यही बात है, बाबा ने तो दो प्रकार का समर्पण बता दिया, एक है प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल तन धन धाम स्वर्ग परिवार के द्वारा अर्पण होना, और दूसरा गृहस्थियों को कैसा अर्पण होना बताया, तुम अपने को मन बुद्धि से अर्पण समझो, माना अंदर से ये समझो कि ये जितना भी मेरे पास तन है धन है समय है संपर्क है मेरे बाल बच्चे हैं पत्नी है बीवी बाल बच्चे ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाना है। अंदर से इस तरह जो समझ करके व्यक्तिगत जीवन में बिना किसी धोखा दिए सच्चाई से चल रहे हैं उनको भी समर्पित कहा जाएगा या नाम समर्पित कहा जाएगा, समर्पित कहा जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में वो प्रूफ होना चाहिए। क्या सिर्फ कहने कहने मात्र के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए। तो दोनों भी प्रकार से, चाहे वो घरस्थ में रहकर के समर्पित जीवन बिताए रहे हैं और चाहे वो बाप के सामने खा करके समर्पित जीवन बिताए रहे हैं, थोड़ा सा कौन सा पड़ता है, क्या सा पड़ता है, जो जन्मों का आकर के समर्पित जीवन बिताते हैं उनमें संख्या जाति किसकी होती है, कन्याओं की होती है, माताओं की होती है, अगर कुमारों की होती है, कुमारों की होती है, किसकी होती है, कन्याओं की होती है, और कन्याओं के प्योरिटी की पावर जाति होती है। अगर वो कन्याएं अपने मन को कोई दूसरे के राय में न लगाकर एक तरफ रखती है, मधुबन में ही अपनी बुद्धि रखती है, तो उनका भाग्य जाती बन जाता है। और अगर बुद्धि बाहर भटकती है तन से जो भी धन है उससे अर्पण होने के बाद बुद्धि बाहर भटकने के कारण जैसे कोई यज्ञ में आहुति डाली जाती है